वीडियो की प्रस्तुति
गजर क्या है।
गजर की तरह विशेष अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी
बिलासपुरियंस की आवाज
सभी श्रोता साथी स्वीकार करें अपनी सहेली अलंकृता का नमस्कार। मैं हर हफ्ते की तरह इस बार भी हाजिर हूँ आपके साथ लेकर कार्यक्रम गजर। पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी कुछ टीचर से और उसके पहले हमने बातचीत की थी स्टूडेंट से और जाने थे उनके विचार। तो इस बार मैं आ गई हूँ लेकर पेरेंट्स के साथ बातचीत। इस बार हम करेंगे बातचीत पेरेंट्स से और जानेंगे कि क्या है उनके विचार। तो फिलहाल मेरे साथ हैं खबरगंज में रहने वाली इंदु मिश्रा जी। तो आइए जानते हैं कि एग्जाम्स से रिलेटेड इन्हें क्या लगता है कि बच्चों को किस तरीके से परेशानी होती है एग्जाम के वक्त।
नमस्कार। एग्जाम के समय बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है और उनके साथ साथ माता पिता को भी उन सब परेशानियों को उनको दिखाना नहीं पड़ता है कि हम परेशान हैं, लेकिन उनसे हर माता पिता रूबरू होते ही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का एग्जाम होना और उसके साथ उनके माता पिता को पूरे टाइम उनके साथ देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक माता पिता के लिए बहुत चैलेंजिंग का विषय होता है।
तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ से होती है एग्ज़ाम के वक्त?
परीक्षा के समय अक्सर बच्चे पढ़ते तो हैं, कंटिन्यू आजकल लगातार पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं, लैपटॉप में पढ़ते हैं, जिससे उनको एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ता है। समय समय पे भूख लगती है, कभी मानसिक परेशानी होने के कारण वो लोग अपनी भूख बता नहीं पाते, लेकिन माता पिता हैं जो हमेशा उनको ये लगा रहता है कि बच्चों को कुछ तकलीफ तो नहीं है, भूख तो नहीं लग रही है। इसलिए मैं माँ हूँ तो मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं बच्चों से पूछती हूँ, बेटा भूख तो नहीं लगी, कुछ शरबत पियोगे, कुछ खाओगे, या उनकी पसंद का चीजें बनाना पसंद करती हूँ।
अच्छा, तो आपके बच्चे अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं?
मेरी बिटिया क्लास 12th में है और बेटा 9th में है।
अच्छा, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर कर रही है आपकी बेटी?
हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम चल ही रहा है उसका और वो काफी मेहनत भी कर रही है। और मैंने बच्चों के ऊपर हम वैसे प्रेशर तो नहीं देते हैं कि उनको जितना पढ़ना है वो अपने हिसाब से पढ़ें, लेकिन ये है कि हाँ अपना बेस्ट एग्जाम में जरूर दें।
अच्छा, तो बोर्ड एग्जाम्स है, हर साल तो एग्जाम देते ही हैं बच्चे, लेकिन इस बार जो आपकी बिटिया बोर्ड एग्जाम दे रही है तो आपको क्या लग रहा है कि उसको किस तरीके की परेशानी हो रही है या क्या चीज उसके दिमाग पे थोड़ा सा टेंशन दे रही है?
अब लड़कियां हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे आज ही हुआ, आज उसका एग्जाम था और मॉर्निंग में ही उसको थोड़ा पीरियड्स का प्रॉब्लम आ गया, जिससे वो तुरंत ही घबरा गई, बोली माँ मेरे को कैसा करूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उसे समझाया कुछ नहीं बेटा, ये महिलाओं से संबंधित ये हमेशा के लिए दिनचर्या में शामिल करो इसको और इसको नज़रअंदाज करो और जो तुम पढ़ी हो उसको याद रखो, मन में अच्छा रखो और तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैंने आज उसे विदा किया। और मेरा मानना है, ऐसे मैं सब पेरेंट्स के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं जो महसूस की हूँ कि जब पहले दिन मेरी बिटिया का सेंटर था, वो पढ़ती ब्रिलियंट बहतराई में है, लेकिन उसका एग्जाम का सेंटर मिला उसको KPS कोनी। अब बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ के वातावरण से वो लोग बहुत परिचित रहते हैं, उनको उस माहौल में रहना अच्छा लगता है, और यदि उसी स्कूल में उनको सेंटर मिले तो उतना दूर नए जगह पे जाना, नए सेंटर में जाना, वहाँ का माहौल को अपना आत्मसात करना, और शिक्षक भले उनके अलग रहते हैं कोई बात नहीं, शिक्षकों का कोई इतना एग्जाम के समय में रोल नहीं होता है, लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि यदि बच्चों को उन्हीं के ही स्कूल में केंद्र दिया जाए परीक्षा का, तो वो लोग मानसिक रूप से बहुत ही स्वतंत्र होके और बेहतर ढंग से एग्जाम का काम कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स को दूसरा सेंटर दे दिया जाता है तो उस माहौल में ढलने में उनको थोड़ा सा
माहौल में ढलना भी होता है और बहुत दूर दूर उनको जाना पड़ता है और वहां पर स्कूल की बसेस हमेशा प्रोवाइड नहीं होती है, लेकिन उन्हीं के स्कूल के सेंटर में होगा तो ये उस स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि हमको अपने ही बच्चों को अपने ही स्कूल में लाना है, तो वो लोग वो बस की भी सुविधा देंगे,
तो जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं उनको लाने ले जाने,
वो ट्रांसपोर्ट भी उनके लिए यूज होगा। मैं देखी उस दिन कि कोई बच्चे इतने दूर से आ रहे हैं, स्कूटी में आ रहे हैं, कोई तेज चला रहे हैं गाड़ी। एक बच्चे को तो मैंने ऐसा देखा जिसने अपना एडमिट कार्ड भूल गया था और वहीं पर उसको लगा कि अब मैं क्या करूं, फिर उसने फोन किया अपने घर पे और फिर उसके घर से आए, मीन्स वहां पर 15 मिनट में ही उसका मानसिक भी परेशानी उसको सामना करना पड़ा, उसके घर वाले आए उनको भी एक तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो यदि स्कूल में ही केंद्र है तो स्कूल में लगभग सबके पास एक एक कॉपी वो भी रहती है प्रवेश पत्र की, तो शायद इन सब चीजों से बचा जा सकता है
और बच्चों को भी ज्यादा टेंशन नहीं होगा।
हाँ, बच्चों को टेंशन फ्री रहने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। यदि आगे CBSE बोर्ड वाले इस चीज को समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ये ऐसा मेरा मानना है।
हम उम्मीद करते हैं कि शायद जैसे हम सोच रहे हैं वैसा कोई और भी सोचे और इस चीज को लागू किया जाए जल्दी।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले ही दिन गई तभी मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा चीज है। भले वो अपना सेंटर बच्चों का वहीं दे, वहां पर वो लोग जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो दूसरा दे दे, इनविजिलेटर है वो दूसरा दे दे, उस स्कूल का कोई वहां ना रहे, सिर्फ बच्चे ही अपने वहीं पर एग्जाम दें। और आजकल तो इतने माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रोसेस हो गया है कि आपको निरीक्षण भी करना है तो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त कर दीजिए और बच्चे अपने ही सेंटर में, स्कूल में ही जाके सेंटर में एग्जाम दें, तो उनका मानसिक जो स्तर है वो और ऊंचा होगा।
अच्छा, ये जरा माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में बताइए हमें।
माइक्रो ऑब्जर्वर एक ऐसा ऑब्जर्वर होता है जो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उनके पास वो टेक्निक रहती है जो पूरे सेंटर का वो लोग सुपरविजन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर आजकल इलेक्शन में भी माइक्रो ऑब्जर्वर रखा जाता है। मैं भी एक शिक्षिका हूँ तो मुझे इन सब चीजों का की जानकारी है। तो माइक्रो ऑब्जर्वर एक बहुत ही अच्छा पद होता है और वो लोग रहने से अपन को माने किसी चीज का भय नहीं रहता है, कोई ऐसी गलतियां कोई नहीं कर सकता, तो ये होना चाहिए।
मतलब जो ये जो चीटिंग वगैरह के चांसेस हैं वो नहीं
रहते। सभी के चीटिंग के भी, और बच्चे उस सेंटर में एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ के टीचर नहीं है, सुपरिटेंडेंट नहीं है, और आपको यदि स्कूल के ही बारे में और ऑब्जर्व करना है तो माइक्रो ऑब्जर्वर इज द बेस्ट।
अच्छा, तो आपने अभी कहा कि आप शिक्षिका हैं, तो आप कितने सालों से शिक्षिका हैं?
मैं 25 वर्ष मुझे पूर्ण हो गए शिक्षकीय कार्य में। 1998 में मैंने पहली बार शिक्षिका के पद पे ज्वाइन किया था।
अच्छा, 25 साल का एक्सपीरियंस है मतलब आपको।
हाँ हाँ,
तो ये बातें जो हम सुन रहे हैं वो एक माँ और शिक्षिका दोनों के नजरिए से हम सुन पा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया।
थैंक यू।
श्रोता साथियों, अब अलंकृता पहुंच चुकी है दूसरी पेरेंट के पास जानने अपने प्रश्नों का जवाब। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं माधवी जी से और जानते हैं कि इनके बच्चे कौन से क्लास में हैं।
मैं माधवी अग्रवाल दयालबंद मुक्ति धाम में रहती हूँ और मेरी एक छोटी बेटी है 7 साल की जो क्लास 1 में है।
अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ती है आपकी बिटिया?
मेरी बेटी ऋषि कॉलोनी में है ना, ट्विंकल पब्लिक स्कूल, वहीं पढ़ती है।
अच्छा अच्छा, तो अभी तो इन दिनों सब जगह फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, तो आप क्या देख रही हैं कि आपकी बेटी किस तरीके से टेंशन में है एग्जाम के लिए?
मेरी बेटी बिल्कुल टेंशन में नहीं है एग्जाम के लिए, पूरा टेंशन मेरे को है उसके एग्जाम का। कारण ये कि जब उसका टेस्ट होता है क्लास में और वो कम मार्क लेके आती है तो पूरा दोष मेरे ऊपर डालती है कि मम्मा आप इसको पढ़ाए नहीं थे मेरे को। हाँ पूरा, वो ना आती है घर, उसको कम मार्क मिला तो तुरंत बोलेगी मम्मा आप इसको नहीं पढ़ाए थे इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ। तो मेरे को फिर वहाँ पे लगता है कि शायद मेरी गलती है, मैं इसको सच में इसको नहीं पढ़ाई थी ये तो। और मैं उसको क्या है ना, ट्यूशन में भी देख चुकी हूँ, मतलब बहुत ट्यूशन वाले अच्छे होते, पूरे पूरे को नहीं बोलती मैं, लेकिन जहाँ मैं उसको डाली थी मैं उसको देखी कि मतलब जिस टाइम पे उसका FA2 का एग्जाम चल रहा था तो मैं मैडम को उसको बोली कि मैडम थोड़ा देख लेना एग्जाम का टाइम है, तो उसकी मैम सीधा मेरे को बोल दी कि कोर्स ज्यादा है आप देख लीजिएगा खुद भी करके। तो मैं सोची जब देखना ही है तो फिर अच्छे से मैं ध्यान दूँ अपनी बेटी को, और जब मैं ध्यान दी तो मेरी बेटी क्लास में पूरा टॉप की है।
अच्छा,
तो मेरे को ऐसा लगा कि पेरेंट्स अगर ध्यान देंगे, मेरी बस बात नहीं है, अगर पूरे पेरेंट्स अपने बच्चे को सच में ध्यान देंगे तो ट्यूशन के बजाय हम घर में बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर करा सकते हैं। और ऐसा मैं खुद मतलब महसूस की जब अपनी बेटी को मैं समय दी हूँ तो मेरे को लगा कि हाँ बच्चे को अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा।
अच्छा, तो माधवी जी ये बताइए, अभी आपने बताया कि बेटी के एग्जाम की टेंशन आपको बहुत रहती है, तो जब उसका एग्जाम चलते रहता है तो आपके दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार के बदलाव आप देखती हैं?
मेरा कुछ वैसे तो कुछ भी खास बदलाव नहीं है, लेकिन बस ये है कि मैं 2 घंटे जो बाहर बैठती थी चाची लोग के साथ बैठ जाती थी, वो 2 घंटे अभी जब से इसका एग्जाम पास आया है मेरा लगभग 1-1.5 महीने से वो पूरा मैं बंद कर दी हूँ बैठना। मैं वो टाइम 2 घंटे शाम को मतलब उसको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ऐसा मैं एक रूटीन बांध ली हूँ कि उसको भाई टाइम देना है। उस 2 घंटे जो मैं बाहर गप लड़ाई हूँ अगर वाकई में बेटी को पढ़ा दूँ तो वो और कितना अच्छा है। तो फिर मैं वो 2 घंटे बस वही चेंज हुआ है कि 2 घंटे बाकी टाइम तो मैं नहीं पढ़ाती, क्योंकि साढ़े 7 बजे वो स्कूल निकल जाती है, 12 बजे आती है तो मैं उसको खेलने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खेलना भी जरूरी है ना, नहीं तो खुद भी इरिटेट हो जाएगी और उसको पढ़ाई से ही नफरत हो जाएगी, दिन भर पढ़ना है क्या मतलब। तो मैं थोड़ा उसको खेलने का टाइम देती हूँ, तो 12 बजे के बाद खाने पीने के बाद वो खेलती है। उसके बाद मैं उसको 4 बजे, कभी 4 बजे कभी 5 बजे, 4 बजे बैठाती हूँ तो 6 साढ़े 6 बजे छोड़ देती हूँ, 5 बजे बैठाती हूँ तो 7 साढ़े 7 बजे, मतलब जो 2 घंटे मैं बाहर बैठती थी वही बस दिनचर्या में मेरा चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
अच्छा, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है, उससे मूड फ्रेश होता है।
फ्रेश रहता है तभी वो बैठती है, नहीं तो क्या होता है, हमारा घर ऐसे आप भी देखे हो अलंकृता की रोड से लगा हुआ है, तो जब मैं उसको अंदर बैठाती हूँ ना पढ़ने, तो अगर खेले नहीं रहती ना तो पूरा उसका जो कॉन्सेंट्रेट है ना बाहर बच्चों के ना आवाज पे रहता है, और वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बोलती है कि जानवी का आवाज आ रहा है, रेवांश का आवाज आ रहा है, सब खेल रहे हैं, आप मेरे को पढ़ने बैठाए हो, इसलिए मैं बोलती हूँ पहले खेल ले और खेलने के बाद जब मैं पढ़ने बैठाऊं तो फिर बोलना नहीं कि मेरे को खेलने नहीं दिए हो, फिर वो 2 घंटे पढ़ना ही है, इसलिए मैं उसको खेलने भी देती हूँ कि कम से कम पढ़ने बैठेगी तो शिकायत ना रहे कि मेरे को खेलने नहीं दिए हो आप करके।
ये तो बड़ी बढ़िया बात है कि आप उसे खेलने भी देती हैं और उसके पढ़ाई का भी इतने अच्छे से ध्यान रख रही हैं। पर ये इतने दिनों जब उसके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं बाहर आना जाना भी अपना बंद करना पड़ता होगा या कम करना पड़ता होगा।
अभी तक मतलब हाँ KG 2 में तो थोड़ा सा ज्यादा भी निकल गई थी जब वो KG 2 में थी, लेकिन क्लास 1 में जब आई और उसका कोर्स को मैं देखी हूँ, और एक दिन का अगर मैं गैप मारती हूँ तो फिर मैं देखी कि मैडम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कोर्स भी बहुत ज्यादा है, तो हमारे एक दिन के घूमने की वजह से बच्चे का इतना लॉस हो रहा है, तो फिर शायद ना मेरी छुट्टियां इधर बंद ही हो जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना क्लास 2 से तो शायद ही मैं कहीं भी आ जा पाऊंगी, मेरे को लग रहा है ऐसा, खुद भी मैं नहीं जा पाऊंगी, जिस टाइप से इसका कोर्स है तो मैं नहीं जा पाऊंगी बाहर, शायद ही मेरा अब जाना आना होगा, जो भी मिलेगा तो गर्मी की छुट्टी में साल में एक बार बस वही रहेगा।
अच्छा, वही मैं जानना चाह रही थी और मुझे बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी मिला कि केवल बच्चे और टीचर ही परेशान नहीं रहते हैं, पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए।
नहीं तो इसमें अलंकृता 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं ना, एक तो ट्यूशन के भरोसे छोड़ते हैं कि ट्यूशन में बच्चा पूरा कर लिया होगा, और एक पेरेंट्स ये होते हैं कि ट्यूशन में किया होगा कि नहीं पहले हम अच्छे से चेक कर लें, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि खुद भी टेंशन लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ, और कुछ पेरेंट्स हैं जो ट्यूशन के भरोसे छोड़े रहते हैं तो उनको टेंशन नहीं रहता कि ट्यूशन में हो गया होगा सब ऐसा।
जी, फिलहाल बिटिया के एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं आपके?
मेरे यहाँ तो अभी ये 6 मार्च से उसका चालू है, इसके बाद 14 मार्च को उसका खत्म हो जाएगा।
अच्छा, मुझे लगता है कि बिटिया के साथ साथ आपको भी ऑल द बेस्ट की जरूरत है, क्योंकि
बहुत
आपको जो उसकी
ज्यादा
तैयारी करवानी है, और सभी माता पिता को ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर और उनकी
बिल्कुल
पढ़ाई
देना
के
चाहिए
भी
भाई,
बीच बीच
बिल्कुल
में
देना ही चाहिए,
निरीक्षण करते रहना चाहिए और साथ में खेलने भी देना चाहिए बच्चों को।
खेलने भी देना चाहिए, बहुत जरूरी है खेलना, तो मालूम
जी,
शारीरिक
शुक्रिया
एक्सरसाइज भी होता
माधवी
है,
जी।
माइंड फ्री भी रहता है। और
जी बिल्कुल, शुक्रिया माधवी जी।
तो इसी विषय से संबंधित अब अपने सवालों का पिटारा लेकर अलंकृता आ गई है भूपेंद्र जी के पास। तो चलिए अब बातचीत करते हैं भूपेंद्र जी से और सर्वप्रथम जानते हैं कि इनके बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं।
नमस्कार, मैं भूपेंद्र नारायण नवरंग और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक थर्ड क्लास में है और दूसरा अभी LKG में है।
अच्छा, तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सारे स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, तो ये एग्जाम्स का माहौल आपके घर में कैसा रहता है?
ऐसे जो काम के नाम से मैं घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन जब भी रहता हूँ तब भी बच्चे लोग के साथ रहता हूँ। उनके स्कूल में जो होते हैं प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ अगर टीचिंग वीचिंग में कुछ प्रॉब्लम रहते हैं वो सॉल्व करता हूँ। तो ज़्यादातर घर में उनकी मम्मी, उनकी चाची ये लोग ही देखते हैं उन बच्चे लोग को। तो उन लोग भी बच्चे के साथ, एक उनका भी एक एग्ज़ाम वाला माहौल चल रहा है अभी घर में, कि सवेरे उठना, बच्चे लोग को उठाना, पढ़ने के लिए बोलना, ये सब अभी माहौल पूरा चल ही रहा है ये।
जैसे हम देखते हैं कि जब किसी स्टूडेंट का एग्जाम हो तो केवल वो स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि पूरी फैमिली उसमें लगी होती है। मतलब घर में अगर टीवी भी चल रही है तो वो भी बंद हो जाती है उतने दिनों के लिए कि नहीं टीवी कोई भी नहीं देखेगा। तो क्या आपके घर में भी ऐसा माहौल है?
जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अभी तो रात में देर तक जगना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सो जाएंगे तब फिर टीवी देखेंगे, ये स्थिति चलती है। तो वो एक करीब 1-1.5 बज जाता है इन लोग के लिए, लेकिन वैसे ही उनके लिए परेशानी ये भी रहता है कि सुबह ही उठना पड़ता है, बच्चों के उठाने के लिए, फिर अभी टिफिन विफिन बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, सब चीज होते रहते हैं।
तो टीवी देखना तो एक बात हो गई, इसके अलावा और क्या पाबंदियां लगी हैं अभी आप पर एग्जाम के लिए?
कहीं आना जाना नहीं है अभी, कुछ खा भी नहीं सकते ठीक से, कुछ खराब चीज मतलब होटल बाहर का चीज कुछ नहीं खा सकते, और समय से उठना, समय पे पढ़ना, ये वो रहता है, बच्चे लोग को उठाना, ये सब रहती है। तो ये पाबंदियां हैं कि ज्यादा टाइम तक जगना नहीं है, जल्दी उठना है, पढ़ाई कितने से कितने टाइम तक करना है, एक शेड्यूल बना के रखना है, ये है वो, बहुत सारी चीजें होती है।
तो कब एग्जाम खत्म होने वाले हैं आपके बच्चों के?
ये होगा 28 या 29 मार्च को।
अच्छा,
तब तक बच्चे लोग के लिए थोड़ा सा माहौल जो है वो स्ट्रिक्ट है।
तो 28 मार्च के बाद ही आपको चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा?
बिल्कुल, 28 मार्च के बाद ही वो जो होगा वो चैन की सांस ले पाएंगे, मैं ही नहीं घर भर के सभी लोग ये कर पाएंगे भी।
अच्छा, तो एग्जाम्स जब चलते रहते हैं तो इस बीच आप क्या देखते हैं कि आपके बच्चे एकदम सीरियसली पढ़ाई करते हैं, टेंशन में रहते हैं, या उनको चिंता नहीं रहती?
नहीं नहीं, वो मतलब पढ़ाई से ज्यादा खेल में ज्यादा ध्यान रहता है उनका। बुक में भी अगर पढ़ते रहेंगे तो उनको ऐसा कोर्स ज्यादा पसंद, जैसे बड़े बच्चे को पेंटिंग का शौक है, वो बुक में पढ़ते पढ़ते वो फिर वो पेंट वेंट करने लग जाएगा, कलर वलर भरने लग जाता है। छोटा वाला फिर वो गिनती रहता है या एबीसीडी जो भी रहता है तो उसको सजाने में या कुछ करने में लग जाता है, तो फिर कोई चिल्लाएंगे उसको देखेंगे वो, तो फिर वो फिर थोड़ी देर चालू रहेगा पढ़ने के लिए, ये रहता है। तो मतलब बच्चे लोग को पढ़ाना भी एक वो है,
टास्क है,
टास्क रहता है घर वाले लोग के लिए।
तो यानी कि जब तक बच्चे पढ़ते रहते हैं उस बीच भी आप उनको पुस्तक कॉपी दे के बैठा नहीं सकते, बार बार आपको निरीक्षण करना पड़ेगा उनका।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर माँ बाप का जिम्मेदारी होता है कि बच्चे हैं तो इतना वो तो नजर तो रखना पड़ेगा उन पे कि उनको कर क्या रहे हैं हर पल, ये रहता है।
चंचल से होते हैं ना, तो पुस्तक से कहीं और ही।
हाँ, तो उसके उसमें एक उसके लिए मैं भी एक तरकीब निकाला हूँ कि कोई भी बच्चे अगर जैसे पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ और उन लोग हॉल में पढ़ रहे हैं, तो वो आवाज में पुस्तक आनी चाहिए।
अच्छा, बोल बोल के पढ़ो।
हाँ, तो ये एक थोड़ा वो रहता है कि आवाज आ रहा है तो हाँ बच्चा वो चीज के लिए पढ़ रहा है मन से, ये रहता है।
और इस वजह से उनका ध्यान भी नहीं भटकेगा।
नहीं भटकेगा, और बोल बोल के मतलब हम लोग भी बचपन में जब बच्चे थे तो मम्मी पापा लोग बोलते थे कि टीचर्स भी बोलते थे कि जो भी कुछ करते हैं तो वो लाउडली बोलना चाहिए, तो उससे क्या होता ये है कि अपने को वो एक माइंड में भी जाता है, कैप्चर होता है,
बोलने का तरीका भी
बोलने का तरीका बनता है। कहीं बच्चे कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको अपन उस चीज को सुधार भी करते हैं, उनका स्पेलिंग का जो भी है ये चीज भी होता है, तो ये भी एक नजर रहता है, ये चीजें होती है।
हाँ, ये बिल्कुल एक बहुत बेहतर तरकीब है, और मुझे लगता है बाकी पेरेंट्स भी इस तरकीब को अपने घर पे अपनाएंगे बच्चों के साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन सभी पेरेंट्स से बात करने के बाद मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि पेपर की रोटी, नोट्स का अचार, बुक्स की चटनी, क्वेश्चन की बहार, टीचर्स की दुश्मनी, दोस्तों का प्यार, मुबारक हो एग्जाम्स का त्यौहार। और हमारे यहाँ तो ये एग्जाम्स का त्यौहार केवल स्टूडेंट्स नहीं बल्कि उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पेरेंट्स से एग्जाम्स के विषय में बात। और आप सभी तो जानते ही हैं कि अलंकृता कोशिश करती है कि गजर के अंत में लेकर आए आप सभी के लिए कुछ खास। तो इस बार भी है मेरे साथ कुछ बहुत ही खास, जो कि है माँ पर लिखी हुई कविता। तो आइए सुनते हैं इंदु जी की जुबानी उनकी लिखी हुई कविता।
कविता का शीर्षक है माँ। मेरी माँ, मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ, हम सबकी प्रेरणा स्रोत माँ, आत्मविश्वास से भरी हुई माँ, सभी कलाओं में निपुण माँ, सभी विषयों में पारंगत माँ, हम सबको सच की राह में चलना सिखाई माँ, धैर्य सादगी की प्रतिमूर्ति थी मेरी माँ, हम सबको आत्मबल से जीना सिखाई माँ, मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ।
कितनी अच्छी कविता थी ना, माँ की याद आ गई। तो श्रोता साथी, इसी के साथ दीजिए अपनी सहेली अलंकृता को इजाजत, फिर मिलेंगे अगले सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।
गजर की तरह ब्रिटिश अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी।
ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।